الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم نے آخرت کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو ایک حد تک, یعنی کہ یہ بات بالکل ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی وہ کسی بھی اعتبار سے آخرت کے موضوع کو کور نہیں کرتی ہے مکمل طور سے, بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اوور ویو ہے, اور جس میں ایک بنیادی مقصد اور انٹینشن یہ تھا السلام کہ ہم زندگی کے اندر اس اہم ترین حقیقت کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں. یعنی آخرت کی جب ہم بات کر رہے تھے یا ہم نے اس موضوع کو لیا تھا تو اس میں ہمارا مین انٹینشن, یعنی اس ماحول میں آ کے جو میں نے چیز سب سے زیادہ محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ ماحول بنیادی طور پر سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کو آخرت بلا دیتا ہے. کیونکہ جب بندہ دنیا میں ہی مشغول رہے, دنیا کی ہی سوچے, دنیا کے ہی حوالے سے ساری پلاننگ کرے, تو ہم اپنے عقیدے کے طور پر کچھ بھی کہتے رہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اس اہم ترین حقیقت کو فراموش کرنے کی ہی حالت میں چلے جاتے ہیں. یعنی میرا مین انٹینشن یہی تھا کہ ہم کم از کم اپنی قبر اور اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچنے کی طرف تو آئیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ شیطان کی اور ابلیسیت کا جتنا نظام ہے اس کی سب سے پہلی ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بندے کو خدا سے دور کرے, جتنے بیچ میں پردے اور دیواریں کھڑی کر سکتا ہے وہ کرے, اور دوسرا یہ کہ انسان کو کبھی موت اور آخرت یاد نہ آنے دے. اور اسی کے لیے مطلب یہ پلاننگ کہ ابھی یہ کرنا ہے, اس سال یہ کرنا ہے, اگلے سال یہ کرنا ہے, پانچ سال میں یہ کرنا ہے, دس سال میں یہ کرنا ہے, اور زندگی ختم. تو بیسیکلی ہم نے انہی سب چیزوں کے ہی کوئی بنیاد بناتے ہوئے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کیا. تو اب یعنی کہ جب اسے ایک پہلو سے ایک حد سے ہم نے اس کو ختم کیا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈسکس کر کے دیکھ لیں کہ یہ ہماری کوشش جو ہے کس حد تک کامیاب ہوئی. انہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً پہلے سے متوجہ ہوں گے, لیکن اس ساری گفتگو کے نتیجے میں توجہ بڑھی, معرفت بڑھی یا نہیں, یعنی کہ ایک ریئلائزیشن آف آخرت, اس میں ہم نے اپنے اندر بہتری محسوس کی, اور اس تھوڑا سا یہ تجربہ شیئر کریں. اور دوسرا یہ کہ پھر جتنی باتیں مجھے نہیں پتا کہ یاد ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جیسے ہم نے نامہ اعمال کی بات کی تھی, ہم نے اس چیز کی بات کی تھی کہ آخرت دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے, فقط پردے ہٹنے کی بات ہے, ورنہ جو اولیاء خدا ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بیک وقت زندہ رہتے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موت آئے گی تو آخرت کو دیکھیں گے یا انتقال ہوگا تو آخرت کو دیکھیں گے. تو یہ سب باتیں ہم نے آپ کے سامنے کی تھیں. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اب آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اور میں بہت کھل کے اور مطلب ایک بے لاگ ڈسکشن چاہتا ہوں کہ انکلوڈنگ کہ آپ کہ اگر آپ کہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آئی ہے, یہ چیز ہم نہیں گریسپ کر پائے, یا یہ بات ایون غلط ہے, تو آپ اس کو بھی دلیل کے ساتھ کاؤنٹر کریں, یعنی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. کیونکہ یہ مجھے میں کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بلکہ کبھی بھی اچھا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کہنے والے کی بات کو بالکل سر جھکا کے مان لیا جائے, اس میں انسان سیکھتا بھی نہیں ہے اس طریقے کا. کیا کہتے ہیں؟
اس میں ایک جگہ پہ میں دیکھ کے سن رہا تھا آپ کے جی, اس میں आपने कंपैरिजन किया था कि जो है इंसान को अगर आखिरत पाने के लिए पहले तो अपने आप को वो करना है, उसके बाद जो है मैं राइट वर्ड्स में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो उर्दू के लफ्ज जो है वो दो तीन बार सुनना पड़ेगा तब ज्यादा। तो बेसिकली उसमें यह था कि जो है जो जो भी चीजें आपने कही थी अर्थ से निकलती हैं, जैसे कि गोल्ड है, वो सब यहीं पे रह जाएगा। उसमें एक आयत थी, उससे रिलेशन ये था कि जो है अगर अल्लाह चाहता तो वो काफिर को भी पूरा गोल्ड दे देता,
सूरह ज़ुख़रुफ़।
तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट मुझे वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि उसमें जो कहा क्या जा रहा है, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट कर दिया अल्लाह ने गोल्ड दे दिया होता उसकी वैल्यू तो वो एक आम चीज जैसे ही हो जाती है, जैसे कि अगर बहुत सारी चीज़ को दे दी गई है। तो उसमें आपने बताया था कि जैसे उसको अल्लाह ने इस तरह कहा है कि जो है तुम तो मटेरियलिस्टिक चीज़ इतनी दे दी जाती कि ताकि जो है आपको उसकी उसी के लिए पीछे पड़े हो, उतना तुम्हें दे दिया जाता कि जो है तुम्हें उसका होना निकलता।
जी, उसका बेसिक थीम ये है कि इस ज़िंदगी में लोग जो कुछ भी जमा करते हैं और जिन चीज़ों को वैल्यूएबल समझते हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी इस ज़िंदगी में आम तौर से लोग जिन चीज़ों को वैल्यूएबल समझ रहे होते हैं, जिनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात फला फला, कि ये तमाम चीज़ें रियल लाइफ के हवाले से कोई वर्थ और वैल्यू नहीं रखती। इसमें अगर मुझे याद आ रहा है तो दो किस्म की आयतों का आमतौर से हमने हवाला देते हैं। एक सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है जिसको आप ये बता रहे हैं कि अगर यानी कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मोमिनीन को मसला पड़ जाएगा इससे, क्योंकि मोमिनीन में भी कमज़ोर ईमान वाले लोग भी होते हैं ना, कि जैसे कारून था तो कारून की दौलत देख के बहुत सारे आम जो लोग थे वो इम्प्रेस हो गए, कहने लगे हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए। और जब कारून को खुदा ने ज़मीन में धंसा दिया तब पनाह मांगने लगे कि अच्छा ही हुआ कि नहीं मिला। तो इस किस्म के लोग भी होते हैं। तो खुदा ये कह रहा है कि अगर इस किस्म के कमज़ोर ईमान वाले लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम काफिरों को कहते जी भर के ले लो, तुम्हारे घर सी छत और सीढ़ियाँ सब सोने चांदी के हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी। यानी इसका मतलब ये वर्थलेस है, ये चीज़ हकीकी ज़िंदगी के एतबार से वर्थलेस है। और अगर आप उस आयत को याद करें जो मैंने पिछली दफ़ा पढ़ी थी सूरह तौहा की, और यही शायद सूरह हिजर में भी, कि वला तमुद्दन्ना अयनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, कि अपनी नज़रों को उस तरफ फिराओ भी मत जो हमने दुनिया की ज़िंदगी में पेयर पेयर बना के और इसकी खूबसूरती, इसके फ्रूट्स, इसके फल फूल सब इनको दे दिए, इसकी तरफ नज़र भी नहीं करो। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोग इस दुनिया की ज़िंदगी में जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो चीज़ें जमा कर रहे हैं या जो चीज़ें जमा करके अपने को दौलतमंद समझ रहे हैं, आखिरत यानि रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव में वो सब का सब एक इल्यूजन है, एक धोखा है, एक फरेब है। उस तरफ अपनी नज़र को ना डालो। और सूरह कहफ की जिस आयत का मैं हवाला दे रहा था वो ये है कि इन्ना मा जअलना अलल अर्ज़ ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि जो कुछ भी हमने ज़मीन पर करार दिया है वो ज़मीन की जीनत है, ना कि इंसान की। ज़मीन की जीनत है मतलब सोना चांदी ये वो जितना कुछ भी है वो माल ज़मीन है। अब ज़मीन ने खुदा के हुक्म के तहत समझ लें कि आपको उधार दिया है कि भाई इस दौलत को या इन मेरे वसाइल को इस्तेमाल करो, इससे अपने वसाइल क्रिएट करो और अपना माल लो और चले जाओ। अब वो बेवकूफ़ शख्स जो दूसरे के माल कर्ज़े को अपना माल समझ के जेब में भरता रहे और ख़ुद अपना सरमाया बनाने पर तवज्जो ना दे, आखिर में क्या हाल होगा उसका। जब वो वहाँ से निकलेगा तो ज़मीन हाथ मरोड़ के गर्दन पकड़ के अपना माल वापस ले लेगी और फिर जब देखेंगे जमीन ने अपना माल वापस ले लिया तो मेरे पास तो कुछ ही नहीं, खाली आ तू। ये होता है उसके साथ कि जो दुनियादार, या क्योंकि ये जितना कुछ है ये जीनत अर्ज है, ठीक है, जमीन अपना माल वापस ले लेगी, कोई शख्स जो है ये घर लेके नहीं जाएगा अपने साथ। इन्हें जितना कुछ हमने जमीन से लिया है अपने यूज के लिए, वो सब का सब जमीन को वापस दे के जाना पड़ेगा। तो अब ये हम सोच लें कि भाई मेरा भी कोई माल है ले जाने के लिए, ये सोचना है हमें कि हम सारी चीजें जमीन की जमा कर करके सोच रहे हैं दौलतमंद हो गए। मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाऊं, बहुत अजीब और रोंटे खड़े कर देने वाली आयत है ये, सूरह इब्राहिम के आखिर में भी, आखिरत के, जहां से हमने उस आयत को लिया था कि यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द वस्समावात, उससे पहले की आयतें, वला तहसबन्नल्लाहा غافلاً عما يعمل الظالمون, یہ آیت نمبر 42 ہے, ولا تحسبن اللہ غافلاً, اس بارے میں گمان بھی نہ کرنا تم کہ اللہ غافل ہے, یعنی اللہ اگنورنس کی حالت میں, کس چیز سے, عما يعمل الظالمون, جو کچھ ظالم لوگ عمل کرتے ہیں, اس سے خدا ہرگز غفلت میں نہیں ہے. غفلت کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انما یؤخرہم, بے شک اللہ ان کو مہلت دیتا ہے, لیوم تشخص فیہ الابصار, اس کا مطلب یہ ہے, یعنی اگر اردو میں, سلیس اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس دن کے لیے مہلت دیتا ہے کہ جب نظریں پتھر کی ہو جائیں گی, یعنی کہ جب کوئی بہت خوفناک چیز کو انسان دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, اب پلک جھپکتی نہیں ہے, ایک دفعہ نظر اٹھی تو دوبارہ پلک نہیں جھپکتی, یہ مطلب ہے کہ ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں اس دن کے لیے, ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ جب نظریں پتھرا جائیں گی, جیسے گویا پتھر کی ہو گئی, ان کا حال کیا ہوگا, محتعین مقنعی رؤوسہم, جیسے اگر کوئی بہت حیران کن چیز ہوتی ہے تو انسان اپنی گردن یوں آگے کر کے, یہ محتعین کہ جو اپنی گردن کو آگے کر کے کھینچ کے, اس کھچی ہوئی گردن کے ساتھ, مقنعی رؤوسہم, ان کے سر فضا میں بلند, فضا کی طرف اٹھے ہوئے, لا یرتد الیہم طرفہم, اور ان کی نظر ان کی طرف پلٹ کے نہیں آتی, افئدتہم ہوا, اور ان کے سینے خالی. یہ خطرہ ہے, افعدہ یعنی یہ سینہ جو ہے, چیسٹ کے, تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم مسلسل آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کا سرمایہ اس کے نفس میں, وہ نہیں ہے جو باہر جمع کیا ہوا ہے, جو افعدہ ہے, فؤاد ہے, سینہ خالی ہے, مثل ہوا, nothing in there, یہ ظالم کا حال ہے. اور اس کے برعکس جو مومن ہے اور جو سچا اور حقیقی انسان ہے, جس نے زندگی میں توجہ کی, اس کا سینہ پر ہے علم سے, عمل سے, اثرات عمل سے, معرفت سے, ایمان سے. تو بڑی, مطلب بہت انسٹرکٹیو آیتیں ہیں یہ دو, کہ یہ جو ظالمین ہیں یہ جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نے اتنے چیزوں پہ قبضہ کر لیا, انہوں نے اتنی دولت جمع کر لی, یہ سرمایہ دار ہو گئے, تو گویا خدا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف ان کو مہلت دے رہے ہیں, اور مہلت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امید ہے کہ یہ واپس رستے پہ پلٹیں, بہتر ہو جائیں, اچھے انسان بن جائیں. لیکن کب مہلت ختم ہو جائے گی؟ جب وہ روز قیامت آئے گا, روز حساب آئے گا, जब लोगों जब इनकी नजरें कैसी हो जाएंगी उस माहौल को देख के, उस हैबत, वो हैबत तारी होगी कि गोया नजरें पलक, इन्हें नजर एक दफा खुली तो पलक दोबारा चपकती नहीं है, आंखें पथरा जाएंगी, गर्दन खिंची हुई होगी, सर ऊपर उठे हुए होंगे, खुद नजर पलट के अपनी तरफ नहीं आती। नजर पलट के अपनी तरफ आने का मतलब वही है कि जैसे पलक झपकने या एक चीज आप देख पा रहे हैं, यानी गोया कुछ भी नहीं देख रहे, और सीने खाली। पांच चीजें बताई खुदा ने, ये जालिमों का हाल होना है। ठीक है, तो ये वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि खुदा कह रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें जमा कर लो, ये कौन सा, तुम कौन लेके जाएगा इसको। क्या मिसाल के तौर पर फिरौनों ने, कारून ने, शद्दाद ने जो जन्नत बनाई लेके चले गए। तो इसलिए वो जो बात आप कह रहे हैं कि खुदा कह रहे हैं परवाह नहीं है हमें इस बात की कि काफिरों के घरों की छतें चांदी की हो जाएं, उनकी सीढ़ियां सोने की हो जाएं, दरवाजे सोने के बन जाएं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि कोई चीज नहीं है। और अगर आपको याद हो, मैंने सूरह कलम की आयतें भी पढ़ के सुनाई थी, याद है कितनी खुदा ने बदतरीन सिफात गिनाई है, चुगलखोर और झूठा और बदनसब और बदकिरदार और सब कुछ। और उसके बाद क्या है, रसूल उसके आगे ना झुकना सिर्फ इसलिए कि वो माल और औलाद रखता है, माल और बेटे रखता है। इसका मतलब है कि इतनी बुरी सिफात के साथ भी ये पॉसिबल है कि एक शख्स मालदार हो और उसका कबीला और उसकी जुर्रियत मजबूत हो। यानी जी वो सूरह हदीद है, वो मुनाफिकीन है, मुनाफिकीन वर्सेस मोमिनीन। और उन आयतों में सबसे खास बात यही थी कि मुनाफिक जो है वो मोमिन के अंदर ही मौजूद होता है दुनिया में, तभी वहां पर दोनों साथ साथ होंगे। लेकिन क्योंकि वो यौम तुबलस सराइर है कि जिस दिन अंदर छुपी हुई सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो ये पर्दा जो दुनिया में बाहर पड़ा हुआ है ये हट जाएगा, फिर ये चीज वो सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे मोमिनीन और मुनाफिकीन।
जी मैं ये कहा था कि जो है अर्थ जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल एनवायरनमेंट, ये हेल की तरह है। और
ये इसमें थोड़ा सा हमें जो है ना एक बात को समझना पड़ेगा, अर्ज अलग चीज है, हयात दुनिया अलग चीज है, नॉट नेसेसरीली अर्ज, हयात दुनिया। हयात दुनिया समझ लीजिए कि वो एक जर्फ है, वो एक डोमेन है जिसमें हम और आप मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, हम और आप जिस डोमेन में मौजूद हैं उसमें लाइब भी है, लहव भी है, जीनत भी है, तफाखुर भी है, तकासुर भी है। यानी हम इन पांच चीजों से फेस टू फेस हैं, हम इसमें मौजूद हैं, इस डोमेन में, इससे अलग नहीं है। ये जो डोमेन है ये हकीकतन जहन्नम है। तो ये जिसमें हम सब, मैं अर्ज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी फिजिकल अर्थ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हयात दुनिया जो है कि जिस जिंदगी में हम उतारे गए हैं, ये जिंदगी की हकीकत जहन्नम है। लेकिन अभी ये जहन्नम जब तक आजमाइश के दौर में है ठंडा है। अगर आजमाइश के अंदर इस एग्जामिनेशन पीरियड में इससे बाहर नहीं निकला है तो गर्म हो जाएगा। जी
तो हयात दुनिया जो है वो सिर्फ हमारे माइंड्स में है या उसका कोई प्रेजेंस भी है?
एक्चुअली है ये मेंटल स्टेट। यानी मिसाल के तौर पर कि जब हम एक जीनत वाली चीज इख्तियार कर रहे हैं, यानी मैंने मिसाल के तौर पर एक 15-20 हज़ार का कोट लेके खरीद लिया, अब ये कोट अपनी जगह मौजूद है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो मेरी मेंटल स्टेट है कि जो मुझे ऐसी इस चीज पर पैसे सर्व करने पर आमादा कर रही है, और उसके बाद मुझे इस तरफ ला रही है कि मैं इसको पहन के बहुत अच्छा लग रहा हूं, यह हयात है दुनिया। तो ये चीज, तो इसलिए मैंने ये जुमला कहा था कि ये पांच चीजें जो हैं ये दर हकीकत फतूर दिमाग है, दिमाग की खराबी है। लेकिन हम सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि ये जितनी लाइफ हम गुजार रहे हैं ये लाइब लहब है या नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा। अगर किसी मोमिन को इतनी तौफीक हो कि इस लाइब और लहब को इलाही बना ले, वो बहुत बड़ा इंसान है, मामूली शख्स नहीं है वो। तो लेकिन ये लाइब लहब है जिसमें हम फंसे हुए, और इसीलिए जैसे कहा जाता है कि रसूल खुदा दिन में 70 मरतबा इस्तगफार करते थे। किस चीज से इस्तगफार करते थे? इन्हीं सब चीजों से। कि यानी कि आप ना चाहते हुए भी इस जिंदगी में बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे रसूल खुदा हैं, अब उनके साथ जितने असहाब बैठे हैं, अब उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके नफूस की खराबियां हैं, उनके मसाइल हैं, उसकी भी टेक केयर आप ही कर रहे हैं। यह जैसे मैंने मिसाल के तौर पर एक चीज ये कही थी कि आप और हम जब एक कह लें काफिला सालार बनते हैं, गार्जियन खुदा ने हमें बनाया हमारी फैमिली का, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें ओन करनी पड़ती हैं कि नहीं करनी पड़ती है ना? यानी किसी भी तरफ से, खानदान की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, खानवादे की तरफ से आ रही है, बच्चे की तरफ से आ रही है, छोड़ के नहीं जा सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिन। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये बेसिकली वही लहब और लहब में ही आ रही हैं। अब उस लहब और लहब को खुदाई बनाना, ठीक है, हमें ये बात पता है कि ये मेरी औलाद जो है ये थोड़े दिनों में जब बड़े होंगे ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इन्होंने कोई मेरे साथ नहीं बैठे रहना और कोई मेरे इस तरीके से बिस्तर से नहीं लगे रहना, ठीक है। लेकिन अब उस चीज को मुझे खुदाई बनाना है। हमें यह बात पता है कि जितनी रिलेशनशिप्स इस दुनिया में डेवलप हुई हैं सब की सब खत्म हो जाएंगी, कोई थोड़ा पहले निकलेगा, कोई बाद में निकलेगा, कोई हम निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी चीजें फानी है। यही है वो जो एतबारी ख्याली बातें। लेकिन इसमें से ही हमें अपने मतलब खुदाई हकीकतों को अखज़ करना है। ये है जिंदगी का असल एग्जाम। हम क्या हिमाकत करते हैं कि हम उसमें से अपनी असल चीज निकालने के बजाय इसको असल समझना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? हम इस रिलेशनशिप को असल समझना शुरू कर देते हैं, जबकि खुदा ने वाज़े कह दिया कि यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी। एक एक रिश्ता गिना दिया कि उस दिन क्या होगा, यफ़िर्रुल मरउ के इंसान फरार कर रहा होगा, भाग रहा होगा, किससे? अख़ीहि अपने भाई से, उम्मिही माँ से, अबीहि बाप से, साहिबतिही शौहर और ज़ौजा से, व बनी है अपने बेटों से, बचा कौन? तो ये यानी कि ये जितनी चीजें हैं ये हयात दुनिया है, ये हयात दुनिया है जिसमें हम आप हैं, ये लाइब लहब है, इसका स्ट्रक्चर लाइब लहब है पूरा। इसमें से हमें खुदाई चीजों को निकालना है। ये इम्तिहान जिंदगी है, ये पुल सरात है।
जी
जी,
तो ऐसा नहीं है कि हमें जाना है,
निकलना है, निकलना है, निकलना है।
दूसरी तरह से सोच है कि
मतलब जी,
पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से जाना है। दूसरा सवाल ये आता है कि यहाँ पर हर इंसान जो है, अगर वो हटा भी दें कि जैसे कोई बहुत मालदार है, लेकिन उस गुर्बत की वजह से जिन चीजों से वो गुजर रहा है, मतलब जिन परेशानियों से, वो एज अ इम्तिहान है या उसकी, क्योंकि वो ऑलरेडी, अगर ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी हम जहन्नम में हैं, तो उसका इम्तिहान चल रहा है किसी चीज का?
दोनों चीजें इम्तिहान है। इस पर तो मैंने बात की थी बहुत क्लियरली
कि
इस जिंदगी में कोई चीज अल्टीमेट जजा और सजा नहीं है, टेम्पररी हो सकती है, अल्टीमेट जजा सजा कोई चीज नहीं है। हर चीज तकलीफ या आसानी एक नया इम्तिहान है। सूरह अल फजर जो है वह अमल, यानी कि जब हमने उनको आजमाया, मबतला हो अक्रमा हो व नअमा हो, यानी इकराम किया, इज्जत दी और नेमतें दे दी, ये भी इब्तला है। और जब इज़ा मबतला हो फकदर अलैहि रिज़्क़हु, कि जब हमने उसके रिस्क को तंग कर दिया या थोड़ा मकदूर कर दिया, मुअय्यन कर दिया, मुख्तसर कर दिया, ये भी इब्तला है। तो अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं है, मतलब अमीरी ना कोई मेरिट है ना गरीबी कोई डीमेरिट है।
इवन अगर अमीरी गरीबी हटा के भी बात करें, किसी को कोई बीमारी है ऐसी जिस पूरी जिंदगी जो है वो कोई
मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए नहीं, उसमें एक चीज है कि मैंने गलती की, उस गलती की वजह से मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, सही है, उस टेम्पररी लेवल पे आप कहेंगे ये सजा है। लेकिन ये सजा खुद एक नए अपॉर्चुनिटी और नए इम्तिहान को जनरेट कर रही है, समझ रहे हैं इस बात को। ये सजा कोई अल्टीमेट सजा नहीं है, बल्कि अब अगर उसके बाद मैं तौबा कर लूं, अपने आप को रेक्टिफाई कर लूं, तो वही तकलीफ मेरी बेहतरी का सबब बन जाएगी।
एक बच्चा पैदा होता है और वो बचपन से पैदा होते ही मेंटली रिटार्टेड है, वो उसमें भी नहीं है कि वो कुछ सोच सके या कुछ वो कर सके, उसकी पूरी जिंदगी
तो उसका कुछ है ही नहीं, उसका क्या फिर। जजा और सजा का ताल्लुक हमेशा इख्तियार से, इख्तियार और तकलीफ से, यानी कि जो कुछ हम और आप समझ के कर रहे हैं, अपनी मारिफत से कर रहे हैं, अपने इख्तियार से कर रहे हैं, उस पे जजा सजा है ना।
नहीं, मेरा कहने का मतलब तो वो किस चीज की ऐसी वो लाइफ,
बहुत सारी चीजें लाइफ में बेतहाशा वेरिएबल्स हैं, यानी मिसाल के तौर पर कि ये जिंदगी जो है ये खुदा ने इंसानों के हाथ में दी है कि नहीं दी।
नहीं, मतलब शायद ये है कि उसने क्या गलती करी जो उसका,
तो उसको सजा किसने, क्या सजा है उसे, मतलब ये किसने कह दिया कि वो सजा भुगत रहा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। देखें इसमें बात यह है कि बात यह है मिसाल के तौर पर कि मैं चले बहुत ऐसी चीज की बात कर लेता हूं जो हम सबको पता है ना, अहले बैत अलैहिम सलाम के साथ जो करबला में हुआ, क्या कहेंगे आप उसको,
इम्तिहान जैसे कि,
क्यों कहेंगे इम्तिहान, आप उसको दुनिया के पैर जो मिसालों को आप ला रहे हैं उससे पैरेलल बनाइए। नहीं तो फिर आप दुनिया में जो लोगों के साथ जो चीजें हो रही हैं, फिर आप उसको क्यों सजा समझना शुरू कर देते हैं अगर उसमें तकलीफ का अंसर मौजूद है तो।
नहीं, क्योंकि वही मैं थोड़ा सा,
यानी हम ये कह रहे हैं मिसाल, हमारा जो मेंटल ट्रेंड है वो ये है कि अगर मेरे पास दौलत नहीं है तो मैं लेस प्रिविलेज्ड हूं। मिसाल के तौर पर कि मैं चने रोटी खा रहा हूं तो मैं सजा भुगत रहा हूँ कोई जिंदगी की कैद में, जिसके दस्तरखान पे 6 डिशें लगी हुई हैं मुरवन, वो बहुत मजे कर रहा है, उसको खुदा ने इनामात से, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसीलिए हम ये सारी बातें हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि कम से कम स्कीम ऑफ लाइफ तो समझे हम, ना ये सजा है ना जजा है, नहीं कि जिस तरीके से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने सारी अजियतों से गुजरे, अजियतें थी या नहीं थी, हर किस्म की रूहानी जाहिरी बातिनी हर अजियत थी, हम उसको क्यों माज़अल्लाह कोई सजा मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए कि खुद इमाम का अपना कैरेक्टर। देखिए आप इसमें गौर करते जाइए, अगर इंसान का अपना कैरेक्टर दुरुस्त है तो कोई तकलीफ उसके लिए सजा नहीं है। करबला से ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अगर मैं खुद सही इंसान हूं तो कोई तकलीफ मेरे लिए सजा नहीं बन सकती, बनी नहीं सकती। जिस तरीके से कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हर अजियत एक अजर है और एक सवाब है और एक जजा है, और इसी चीज को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मा रअयतु इल्ला जमीला, इसी पूरे उसूल को इस एक जुमले में समेट दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्या मतलब
कि मैंने नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के कुछ और, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इलाही इंसान हो, आप खुदा के रास्ते पर हो और कोई भी चीज आपको सजा के तौर पर मिल जाए। तो लेकिन अब आपको इन दोनों बातें समझना पड़ेंगी कि दुनियावी तकलीफ कोई चीज नहीं है ऐसी कि जिसको आप सजा या हम आप सजा समझना शुरू कर दें।
लेकिन फिर अगर मैं वापस
जी
कि दुनियावी तकलीफ अगर जैसे कि हमारी अभी बात हुई ये थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ।
जी 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 जरूर।
एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जहन्नम है, तो जहन्नम का मतलब है दो ही चीजें हैं एग्जिस्ट करती हैं, या आपको जो आप अच्छे काम करेंगे उसके लिए आपको जन्नत की एक वो है और एक जहन्नम की। तो जहन्नम में तो ऑलरेडी हम इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं।
नहीं, ये बात कहां से ही? जहन्नम का मतलब ये है कि ये एक ऐसी जगह है कि जो जिसे खुदा ने कहा असफलुस्साफिलीन, और यहां पर खुदा के इनाम और रहमतें मौजूद नहीं है इस डोमेन में। अगर कोई इंसान खुदा का इनाम याफ्ता बनेगा या खुदा की रहमतों को पाएगा तो वो एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर होकर ही उसको हासिल कर सकेगा। ठीक है, ये जहन्नम क्यों है? इसलिए कि वही पांच चीजें लाइब और लहब है, इसलिए जहन्नम है। और जो इसमें फंसा रह जाएगा, जो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, वही जहन्नम की हकीकी शक्ल को देखेगा। ये मतलब थोड़ी है कि उसके लिए कि किसी गुनाह की सजा में हमको यहां फंसा दिया और हम जल रहे हैं। जो इंसान लाइब और लहब से बाहर नहीं निकलता उसके लिए खुदा की कौन सी रहमत है?
उस इंसान के लिए, लेकिन
तो यही तो बात है।
हाँ, मतलब इस दुनिया में है,
हयात दुनिया की हम बात कर रहे हैं, यानी आपको पूरी चेन ऑफ लॉजिक शुरू से लेके चलना पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं एक एक चीज है हयात दुनिया। ठीक है, हयात दुनिया किसे कहते हैं? हयात दुनिया जैसे मौलाना रूम ने कहा कि इस अर्ज की चीजें या माँ बाप मिसाल के तौर पर या औलाद, ये हयात दुनिया नहीं। हयात दुनिया खुदा ने समझा दी कि ये चीजें, और उनमें भी मेन हेडिंग क्या है? लाइब और लहब है। जो हयात दुनिया से बाहर नहीं निकलता, यानी लाइब और लहब वाली चीजों से अपनी जिंदगी को जुदा नहीं करता, वो एक वक्त तक उसको मोहलत मिलेगी, यानी कि वो एक वक्त तक जहन्नम में रहेगा जबकि जहन्नम ठंडा है। यानी जैसे इतने सारे लोग हैं कि जो इस जहालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लाइब और लहब से बाहर नहीं आ रहे, ये जहन्नम में ही हैं लेकिन अभी जहन्नम ठंडा है, और जैसे ही ये मोहलत खत्म होगी वो इसकी तपिश को और इसकी आतिश को महसूस करेंगे। ठीक है, मोमिन जिस वक्त ईमान को कबूल करता है वो इस लाइब और लहब से बाहर निकल आता है। यानी आपने जब ईमान को कबूल किया, आपने जब खुदा के पैगाम को कबूल किया, तो क्या आपकी और एक काफिर और मुशरिक की जिंदगी एक एक लेवल पर है? ये डिफरेंट है। मतलब इसको क्लियर करते हुए चले, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब है कि वो जो हयात दुनिया जैसे खुदा कह रहा है कि ये सब, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि ये हकीकत जहन्नम है, आप उस जहन्नम से बाहर आ गए। बिल्कुल 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 साथ साथ है। इसीलिए मैं इस चीज को कह ही नहीं रहा कि ये जमीन खराब है। मेरा ख्याल है कि हमने इन बातों पे काफी तवज्जो करने की कोशिश की थी کہ جس چیز کو قرآن نے حیات دنیا کہا ہے پہلے وہ سمجھیں, اور یہ حیات دنیا وہ چیز ہے کہ جس میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں سب, اور یہی حقیقت جہنم ہے. اور اگر خدا نخواستہ مرتے وقت اس سے باہر نہیں نکلے تو پھر یہ جہنم ٹھنڈا نہیں رہے گا بلکہ اس کی آگ نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک مومن ہے, مومن لعب و لہو میں تھوڑی زندہ ہے, مومن حیات دنیا میں تھوڑی زندہ ہے. جی, یعنی کہ مومن جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے پر خدا کے ساتھ ہے یا خدا اس کے ہمراہ ہے. تو مومن اس زندگی میں, جیسے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں, ان میں آپ مجھے تقریباً کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ مومن یا متقی جنت میں جائیں گے. اگر آپ جتنی بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں نعمتوں کے بارے میں, مومنین کے یا جنت کے بارے میں, کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جائیں گے. اس کا ترجمہ ہے کہ ہیں, ان الابرار لفی نعیم, ان المتقین فی جنات وعیون. مستقبل ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مومن اور متقی ہے وہ اس زندگی میں بھی اسی جنت کے ہی ڈومین میں ہوتا ہے, اپنے اپنے نفس کی حالت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل کنسیپٹ ہے, لیکن اس کو اگر ہم سیگریگیٹ کر کے ایک ایک کر کے سمجھیں تو شاید بات سمجھ میں آئے.
اس کے لیے لگتا ہے ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ جو ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچتے ہیں, جنت ایک جگہ ہے اور دوزخ ایک جگہ ہے, یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے.
جی, یعنی کہ جنت اور جہنم کی جو الٹیمیٹ شکل ہے اس لحاظ سے آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جنت اور جہنم کے بارے میں جو بات کی گئی ہے, اور ہمارے بعض عرفا نے تو یہ بات بہت زیادہ کھل کے کہی ہے کہ بیسیکلی ہر شخص اپنی جنت اور جہنم کو اپنے نفس میں کیری کرتا ہے. یعنی کہ ہر شخص کی اپنی جنت اور اپنی جہنم ہے, ہم میں سے ہر ایک کی, اور وہ جنت اور جہنم ہم اپنے نفس میں کیری کر رہے ہوتے ہیں.
جگہ سے اس لیے بھی وہ جاتا ہے, جیسے پورے ملک میں اس کا ترجمہ ایک جگہ پہ ہے کہ جو ہے جب انسان پھینکا جائے گا تو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے دروازے پہ, ہیل کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, اور جو ہے باقاعدہ, تو اس لیے تصور بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے, کس سے بیان ہوتا ہے کہ مطلب ایک جگہ ہے.
ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. یعنی کہ الٹیمیٹلی جب لوگ آخرت میں جائیں گے تو ایک مقام ہوگا کہ جس میں وہ کو وہ جنت کے طور پہ پائیں گے, ایک مقام ہوگا جس کو وہ جہنم کے طور پہ پائیں گے. لیکن کیا جنت اور جہنم کی حقیقت یہی ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے. صحیح ہے نا, جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی ہی آیت آپ کو سنائیں کہ نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. نار ہے اللہ کی, موقدۃ التی جسے اللہ نے ایندھن دیا ہے, کہاں طلوع ہوتی ہے؟ تطلع علی الافئدہ, سینوں پہ طلوع ہوتی ہے. اب یہ کون سی آگ ہے؟ خدا سمجھا رہا ہے نا, جیسے ابھی میں نے کہا افئدتہم ہوا, سینے کچھ خالی ہیں, تو یہ آگ سینوں پہ طلوع ہو رہی ہے. یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم نفوس میں بھی پائی جاتی ہے. جنت اور جہنم کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ جنت وہ مقام ہے کہ جو رحمت خدا کے سائے میں ہے, جہنم وہ مقام ہے کہ جو رحمت خدا سے دور ہے, جس میں لعنت خدا ہے. تو یہ مقام آخرت کا وہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مقام انسان کا دل بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے, انہیں کہ جنت اور جہنم کی حقیقت ایک اور چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ آخرت کے حوالے سے ایک مقام کی بات آئی, ایک دار کی بات آئی, صحیح ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کیا صرف جنت اور جہنم صرف اسی حد تک محدود ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جیسے آغا خمینی نے بھی اس بات کو کہا کہ جہنم جو ہے وہ آخرت کا ہاسپٹل بھی ہے. جہنم وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر خدا کے ساتھ ٹکرانے والوں کو عذاب ملے گا. جہنم وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں مومنین کی کلینسنگ ہوگی. یہ سارے کے سارے جہنم الگ الگ ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. مطلب کہ جنہوں نے خدا سے دشمنی کی, جو خدا کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے, ان کے لیے جہنم الگ ہے. اور ایک مومن ہے کہ جس کے نفس میں خرابیاں ہیں اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی, اذیت اس کے اندر بھی ہے, وہ جہنم الگ ہے. تو یہ الگ الگ اس کے لیول سے.
قرآن کا اگر ٹرانسلیشن کریں تو اس میں جو اس طرح کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ کس طرف لے جاتا ہے؟
کون سا ٹرانسلیشن؟
مطلب جس سے جو بالکل ڈسکرائب کیا جاتا ہے جہنم کو یا جنت کو بھی, جس میں اس طرح سے ڈسکرائب.
جی سلاخوں کا مجھے اتنا پتا نہیں, زنجیر کا ہے ذکر, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا کافی چیزیں اور بھی قابل غور ہیں. کہ جیسے ایسی زنجیر, یہ میرا خیال ہے سورہ حاقہ میں ہے, کہ ایسی زنجیر کے جس کا لینتھ 70 فٹ ہے مثال کے طور پر. اب یہ 70 فٹ, تو اس سے ایک چیز جو ہمارے علماء یا ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, یعنی ایسا نا پتھر کسی بہت گہرے گڑے میں جا کے گرتا ہے. تو اصحاب حیران ہو کے پوچھا کیا کیسی آواز تھی, تو رسول خدا نے فرمایا کہ ایک پتھر جو جہنم میں ڈالا گیا تھا 70 سال گزرنے کے بعد وہ تہ تک پہنچا ہے, یہ اس کی آواز تھی. اور جب آپ یہ فرما رہے تھے تو خبر آئی کہ قریب میں ہی کوئی منافق ہے جس کی عمر 70 سال تھی, اس کا انتقال ہو گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی جو کافر اور مشرک ہے اس کی, وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری زندگی جہنم میں ٹریول ہے. جو منافق نے زندگی گزاری کے پتھر ڈالا گیا تھا اور 70 سال بعد تہ تک پہنچا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہیں وہ جہنم میں سب سے لوئسٹ لیول پہ ہوں گے. جی کافر اور مشرک سے بھی نیچے. تو یہ چیزیں اس لحاظ سے بھی سمجھائی گئی ہیں کہ وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہم جہنم میں ہی ہیں جب تک اس سے نکلے نہیں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. کہ جیسے کافر اور مشرک کی پوری زندگی دکھائی یہ دے رہا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے, 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 لیکن پوری زندگی ٹریول جہنم میں, اور جب اس کی زندگی کے 60-70-80 سال پورے ہوئے تو وہ تہ تک پہنچ گیا. تو یہ اور جتنے بھی یہ عذاب کی بات بتائی گئی ہے, اس میں میں نے ایک بہت شروع میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا, لیکن ایک چیز جو ائمہ علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے ہم کو سمجھائی ہے وہ یہ کہ جتنا جتنا ہم نیکسٹ لیول آف لائف پہ جاتے جائیں گے, یعنی دنیا سے برزخ, برزخ سے آخرت, تو ہمارا سینسیٹیوٹی لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. بتایا تھا نا. تو اس لیے, اور دوسری مصیبت کیا آئے گی, ریٹ آف چینج سلو ہوتا چلا جائے گا. یعنی اسی لیے وہ روایتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ مومن 300,000 سال جہنم میں گزار کے پھر جنت میں پہنچے گے بعض مومنین. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب وہاں جائیں گے ٹھیک ہے ایمان ہے, ये बात तयशुदा है कि जिसके दिल में ईमान है वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, उसे अल्टीमेटली जन्नत में ही जाना है। आमाल में ख़राबी है, नफ्स के अंदर प्रॉब्लम है आमाल की ख़राबी की वजह से। तो अब मैं बहुत आसान समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाइए, वही जैसे मैंने कहा कि वह हॉस्पिटल भी एक जहन्नम की कसम, ट्रीटमेंट कराइए। अब जब भी ऑपरेशन होता है, जब भी ट्रीटमेंट होता है, उसमें दर्द और तकलीफ है या नहीं है उसका हिस्सा? जितनी ज्यादा मुहलिक बीमारी है उतनी ज्यादा दर्द है, उतनी ज्यादा तकलीफ है। खुदा ना खास्ता ऑपरेशन है, अगर जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया गया तो उसके रिकवर होने में उतनी तकलीफ है। यानी ये बात याद रखिएगा, तकलीफ हमेशा रिकवरी में होती है। ये भी इस दुनिया के अंदर बड़ी अजीब मिसाल है, कटने में तकलीफ नहीं होती है। अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से को काट दिया जाए, काटने में तकलीफ नहीं होती, रिकवर होने में तकलीफ होती है सारी। तो अब वहां पे जाके यही सब कुछ हो, ऑपरेशन हो, ट्रीटमेंट हो, तो वहां पर क्योंकि सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई है, यहाँ के मुकाबले में शायद 1000 गुना ज्यादा हो, 10000 गुना ज्यादा हो, तकलीफ भी ज्यादा, फिर क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो है, रिकवरी भी स्लो, पड़ गया ना मुसीबत में। तो इसलिए इन सब चीजों से डराया गया इनको। ये सब भी जहन्नम है, यानी वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक को खुदा उसी में उठा के फेंक दे, हुम फिया खालिदून वाली जहन्नम में के पड़े रहो अब तक। यहां वो सिर्फ उनके लिए है कि जो दुश्मनान है खुदा है, जिन्होंने बाकायदा खुदा से और खुदा के निजाम से मुकाबला किया, खुदा के निजाम को खत्म करने की कोशिश की और इस किस्म के जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो उनके लिए। बाकी लोगों को खुदा का सिस्टम पूरी कोशिश करेगा कि इनको रिकवर करे, लेकिन अब रिकवरी का पेन कौन भुगतेगा उस जगह जाके? अरे ना, मैं समझ, मैंने इसीलिए बहुत सिंपल अल्फाज में उसको बयान करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम है कि हसासियत बढ़ जाएगी और तब्दीली का जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कि मोमिनीन के लिए भी जैसे 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल जानना, तो इसलिए जो कम से कम दुआ हम जरूर करें और नियत जरूर करें कि इस दुनिया से खुदा पाक करके उठाए। और इसीलिए ये तकलीफों की एक और हिकमत है। एक मिनट में बात ये पूरी कर लूं, जो मोमिन है उसके अगर अंदर खराबियां ज्यादा हैं तो खुदा उसे ज्यादा तकलीफ में मुबतला करता है। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया से पाक होके जाए, आखिरत में पाक ना करना पड़े उसको। ये एक ऐसी हिकमत है जो हम बिल्कुल भी नहीं रियलाइज करते कि इस दुनिया में जितनी तकलीफ इंसान उठा ले वो आखिरत की तकलीफ का 0.1% भी नहीं है। तो अगर खुदा एक मोमिन को देख रहा है इस हालत में कि इसके नफ्स में ऐसी खराबी है कि जो क्लीन नहीं हो रही है और ये इस खराबी को लेके आखिरत में चला जाएगा तो मुसीबत में पड़ेगा, तो दुनिया में सख्त तकलीफ से दोचार कर देता है। अब आप इसे क्या कहेंगे, सजा कहेंगे, क्या कहेंगे? ये रहमत कहेंगे, रहमत कहेंगे, रहमत है ना। तो इसलिए तकलीफ का भी पूरा एक फलसफा है जो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से। मोमिन के लिए तकलीफ रहमत होती है आमतौर से, काफिर के लिए खुशहाली लानत होती है आमतौर से, आमतौर से।
अच्छा, इस पे आखिरी सवाल ये है कि अभी जैसे गाड़ी में बात हो रही थी जी, ये हम चूज करते हैं जो ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिजीज, जिसको भी कह रहे हैं, जैसे फिरौन वाली बात हुई थी जी, गाड़ी में, तो ये हम चूज कर रहे हैं ना, ये हमारा बाय डिफॉल्ट नहीं है मेरे
उसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, चॉइस बेस्ड ऑन चॉइस। और जहां पर इंसान मजबूर है वहां पर खुदा की तरफ से अलाउंस है। यानी बहुत सारी चीजें, ये जैसे वही है कि कुरान करीम की आयत है कि फमन इज़्तुर ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह, जो मुज़्तर हो जाए, भूख से मर रहा है, सामने मुर्दार पड़ा है, तो शरीयत ये नहीं कहती कि आप हराम समझ के छोड़ दो, जान बचाओ अपनी। फमनतर जो मुजतर हो जाए, गैरा बागिम वला आदिन, ना बगावत पर आमादा हो ना ज्यादती कर रहा हो, फला इस्म अलैह, उस पर गुनाह नहीं है। तो खुदा इंसान की मजबूरियों का पूरा लिहाज रखता है। जहां पर हम अपने इख्तियार से गड़बड़ करते हैं ना, अपने चॉइस से, वहां पर फिर हिसाब है। जहां पे फंस गए ठीक है, खुदा की तरफ से भी अलाउंस है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा।
इसी से रिलेटेड अभी पॉइंट आया था कि जो हॉस्पिटल की आपने मिसाल दी
जी,
तो लोग जो यहाँ पे अगर जहन्नम के अलावा जैसे और चीजें करते हैं, हज पे जाते हैं, वहां पे जाके सारे उनके गुनाह जो हदीसों में सुना है, सारे उनके गुनाह एक न्यू बॉर्न की तरह हो जाते
जी,
अराफात में माफी मांगते हैं, और फिर वो वहाँ यहाँ तक के लिखा है कि आप नियत करके वहाँ से निकलें, तो फिर जो है ऐसे ये ना सोच के निकलें यार मेरे माफ हुए होंगे नहीं, 100% गारंटी है
जी।
तो वो क्या है फिर, मतलब अगर दुनिया में अगर जहन्नम ही से हॉस्पिटल
नहीं 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 आप फिर वही चीजों को मिक्सअप नहीं, फिर से कहिए।
तो जैसे जैसे एक
मैं जहन्नम किस चीज को कह रहा हूँ, ये हयात दुनिया जो लहब लहब से बनी है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है या नहीं है?
जी जी,
ये क्लियर है ना। तो जो मोमिन है वो हयात दुनिया लहब लहब से आजाद हो गया, तो वो इस जहन्नम से निकल गया और वो जन्नत की हवाओं को महसूस करता है अपनी जिंदगी में, ये बात भी क्लियर है। यानी कि दो अफराद साइड बाय साइड रहते हैं, एक मोमिन है एक काफिर है, काफिर उस जहन्नम में फंसा हुआ है और जो मोमिन है वो जन्नत की खुशबू को महसूस कर रहा है जिंदगी में, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं?
अब मैं कह रहा हूँ वही जो काफिर है उसने
तौबा की तो वो निकल आया बाहर,
अल्लाह के पास
निकल आया बाहर, तो खत्म बात। यानी कि जब इंसान तौबा करे खुदा की तरफ पलटे, तो वो लहब लहब वाली जिंदगी से बाहर निकल गया, जहन्नम खत्म हो गई। देखें जब भी, यानी कि जैसे खुद पैगंबर अकरम का कौल है कि जिस हालत में तुम्हारा इंतकाल हुआ वो क़यामत आ गई, मतलब वो हो गया, ठीक है। क्योंकि और इस चीज़ को मैंने ये कहा था कि हम जो कुछ भी हैं वो अपने साथ अपने नफ्स को लेके घूम रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं जब मरूंगा तो बैठ के हिसाब होगा कि इन्होंने इतने सालों में ये किया और वो किया और उसके बाद ये चीज़ मिल जाएगी और वो चीज़ चली जाएगी, बल्कि मैं इस वक्त जितना भी हूँ वो अपने इल्म और अमल का नेट नतीजा हूँ जी। यानी कि जो नेट आउटपुट है, जितना भी मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है इल्म और अमल, वो इस वक्त मैं हूँ। और जैसे ही मैं इस जिस्म से बाहर निकलूंगा वो उसी हालत में, वो हालत, इन्हें फ्रोजन से मुराद ये कि वही हालत, उसमें इंसान तब्दीली नहीं ला सकता फिर अपने अमल के जरिए से, क्योंकि अमल ख़त्म हो गया। यानी नफ्स की हालत में जो तब्दीली, और यही चीज़ है कि जो कुरान करीम में आई कि जब काफिर और मुशरिक क़यामत में अपनी हालत को देखेगा तो वो ये कहेगा रब्बना इरजिना, हमें पलटा, कुन्ना नअमल सालिहन, ताकि अमल सालिह कर सके। इसलिए कि तब्दीली अमल से आती है, वो जिस्म ख़त्म हो गया, अमल ख़त्म हो गया, अमल की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। तो फ्रोजन से मतलब ये है कि नफ्स की जो हालत जिस जगह पर है वो रहेगी। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग अगर किसी हादसे का शिकार होकर मरते हैं तो हादसे का जो इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर आके मतलब बैठ जाता है, वो उस पर एक इम्प्रिंट के तरीके से आ जाता है। अगर आप उस नफ्स को उसी हालत में छोड़ देंगे तो हो सकता है 100 साल, 200 साल, 400-500 साल बाद वो उस कैफियत से बाहर आए। यानी आप जो मोमिनीन के लिए मगफरत वाली चीज़ है ना, इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कीजिएगा कि जब हम किसी मोमिन के या किसी मुसलमान के इंतकाल के साथ फौरन उसके लिए जो कुरान भेजना शुरू होता है हो जाते हैं, ये उसको उसी फ्रोजन स्टेट से बाहर निकालने के लिए मदद करता है कि वो जो बेचारा अभी हादसे में मरा, किसी मुसीबत में मरा, बीमारी में मरा, वो जब जिस्म ख़त्म हो गया लेकिन वो अभी भी अपने आप को उसी हालत में फील कर रहा है। तो जब हमने पहले सबसे पहले क्या किया, कब्र में ही उसको कंधा हिला हिला के उसको तलकीन पढ़ाई कि नहीं, इस तलकीन का मतलब क्या है कि आप उस मुर्दे को ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम एक दूसरी ज़िंदगी में चले गए हो, अपने आप को उसके लिए अपने नफ्स की आँखें खोलो। क्योंकि ज़्यादातर अफराद क्या है, इसमें फंसे हुए, तो इंतकाल भी हो गया, नफ्स की सारी तवज्जो इधर ही है, देख ही नहीं रहे वो जो आगे जो पूरा दरवाजा खुला है, देख ही नहीं रहे उस तरफ। तो तलकीन से ये चीज़ शुरू हो जाती है कि जब हम उसको कंधा हिलाते हैं, उससे कहते हैं कि अब जो है वो ये है और रसूल खुदा और आइम्मा और जन्नत हक है और सिरात हक है और सारी चीज़, तो ये बहुत बड़ी रहमत है जो खुदा की तरफ से हमको अता हुई है। और जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि मर गए, ख़त्म हो गया, सब ये हो गया वो हो गया, वो ख़ुद अपने हाथों से अपने मुर्दों को अजाब में डालते हैं अगर मगफरत ना करें। तो ये मतलब है फ्रोज़न का कि जो जिस हालत में नफ्स, एक तो ये कि अमल की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, तो वो ख़ुद अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकता, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस हालत में नफ्स जाता है वही हालत उस पर एक तरीके से छप जाती है, ठीक है। तो हम जब ये दुआएं पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ये चीज़ उसका नफ्स रिसीव करता है, तो रफ्ता 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 करके उसको क्या महसूस होने लगता है कि वो अपनी असल हालत को देखने के काबिल होता है कि अब मैं उस जगह पे नहीं हूँ, अब मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। एंड सो तो हाँ, यानी आप जितना बरज़ख में तो फिर भी तब्दीली है, आखिरत में तो बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमको समझ में आती हैं कि जैसे रसूल खुदा ने क्या फरमाया है कि अगर तुम अपने हाथों से अमल करके जाओ वो तुम्हें ज्यादा फायदा देगा बजाय इसके कि इवन मैं तुम्हारी तरफ से कोई नेकी करूं। खुद अपने आप को कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से कोई नेकी करूं उसका सवाब कम है बजाय बनिस्बत इसके कि तुम खुद अपने हाथों से काम करके इस जिंदगी में। तो तब्दीली अमल से आती है। तो कुरान करीम ने जो आयतें नकल की वो यही कहेंगे कि हमें पलटा दे ताकि हम अमल सालेह कर सकें, ये नहीं कहा कि हम ईमान ला सकें। तो इस ज़िंदगी की जो मेन क्वालिटी है या मेन बुनियादी तौर से रहमत खुदा है, वो अमल की अपॉर्चुनिटी है अपने अख्तियार से, चॉइस, चॉइस एंड एक्शन, ये वो चीज़ है कि जो इंसान को बनाती है। और रॉन्ग चॉइस और रॉन्ग एक्शन ये वो चीज़ है जो इंसान को तबाह करती है।
अजल और तवफ्फा और इंतकाल के उससे,
अजल तवफ्फा और मौत,
मौत के उससे जो है जैसे सिले रहमी से मौत का टाइम जो है बढ़ सकता है, मगर टाइम एक मुहैया है, उसी तरह प्लेस भी जहां तक है वो भी प्री डिटरमिंड है, मगर हाउ अ पर्सन डाइज इज दैट आल्सो डिटरमिंड, प्री डिटरमिंड।
ये आप कैसे कह रहे हैं डिटरमिंड, और किस सेंस में कह रहे हैं डिटरमिंड?
अजल की बात हुई थी तो अजल का पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है
कि एक मुद्दत है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, सही,
मुद्दत वाली बात हुई
जी।
और जहां तक मुझे, मैंने जो समझा, मैंने उसको गलत सुना, मुझे ये लगा उससे कि जो है प्लेस भी शायद मुहैया, मतलब जो आदमी कल कर
प्लेस वाली बात ना मुझे याद नहीं है, लेकिन अजल मीन्स टाइम पीरियड, ठीक है, कि हर हर नफ्स के लिए, हर उम्मत के लिए एक अजल है।
ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह समझ लिया कि क्या प्लेस एंड हाउ अ पर्सन डाइज इज आल्सो डिटर, मतलब प्री डिटरमाइंड, या जैसे अजल में टाइम का वो है?
ऐसा लगता नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं ये इंसान पर बहुत ज्यादा मुनासिर है।
प्लेस का मुझे याद आ गया, मैंने एक हदीस सुनी थी कि जो
है हदीस में होगा, कहीं हदीस में होगा,
आदमी जो है भागा
जी
उसने उनसे
कहा जी, ये तो वाकया हुई, तो
रिवायत एक, तो फिर वो कि जी मुझे कोई घूर रहा था और मुझे लग रहा था उन्हें जान
निकल, ये हदीस तो नहीं है, ये हदीस नहीं है,
वाकया
हां जी
वाकया था। तो उससे मुझे ये लगा कि प्लेस इज आल्सो प्री डिटरमाइंड, जैसे अजल में टाइम भी है। तो
बज़ाहिर ये सब चीजें इंसान के अख्तियार में, ये सब चीजें ये नहीं, वही है आपका ईमान और आपका अमल, ये सब चीजें इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी मौत किस तरीके से आएगी, कैसे आएगी, किस हालत में आएगी।
हाउ मैं खुद ये कहना, मतलब हाउ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई आदमी कैसे मरता है ये आपके ऊपर वो है, मगर
देखिए ना जैसे जैसे इस पे तो बहुत हदीसें आप लोगों ने सुनी होंगी कि मोमिन के लिए क्या होता है, मोमिन की मौत कैसे आती है, जिस तरीके से इन्हें कहा गया कि मलकुल मौत आते हैं, उसको एक जन्नत के फूलों का गुलदस्ता सुंघाते हैं, खुशबू सुंघाते हैं, उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है, अलहदा हो जाता है। या ये कि बाज़ औक़ात के उसे इंतकाल से थोड़ा पहले आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की शक्लें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और वो इतना ज़्यादा उनकी तरफ मोहब्बत महसूस करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब नफ्स जिस्म से जुदा हो गया, ठीक है। और इसके बरक्स जो काफिर है उसकी मौत क्या है कि जैसे आप एक चादर को कांटों वाली झाड़ियों पर डालें और उसको खींचें तो वो जैसे फट फट के निकलेगी उससे। तो ये सब चीज़ें तो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी जो जैसे लोग कहते हैं कि दुआ करते हैं कि खुदा मुझे शहादत की मौत नसीब कर, तो उन्हें वो खुदा वो चीज़ देता है। तो यानी ये कहीं भी नहीं कहा गया कि इस तरीके से मरोगे, ये कहा है अजल है, यानी एक टाइम पीरियड है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते तुम। और इंसान अपनी अजल को जल्दी या देर भी कर सकता है, वही जो आप जी जी
मतलब जो है
वो भी उसके मुताबिक डिसाइड होगी। बिल्कुल हमारे लिए
तो सब कुछ वो तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, यानी पहले ज़हन में ख्याल है, बट अल्लाह ऑलरेडी एक प्री डिटरमाइंड, ही नोज कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड।
देखें वो जो अभी वहाँ मैंने पिछली दफ़ा उसमें एक हॉपर्स में एक जुमला कहा था कि मसला ये नहीं है कि खुदा हमसे करीब है, मसला ये है कि हम खुदा से कितने करीब हैं। सही है, तो ये नहीं है कि खुदा जानता है या नहीं जानता, वो तो बता दिया उसने कि यहूल बैन अल मर व कल्बिही, तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान हमें अक्रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि इल्म खुदा में है या नहीं, खुदा हमसे करीब है या नहीं, मसला हमारी एवोल्यूशन का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का खुदा को पता है, लेकिन खुद हम कितने कॉन्शियस हैं अपनी बेहतरी के हवाले से। यानी जब हम दुआ मिसाल के तौर पर कर रहे होते हैं तो ये दुआ खुद मेरे नफ्स में बेहतरी ईजाद करती है, ये असल मकसद है। खुदा को इससे लेना देना थोड़ी कुछ हमारी दुआ से। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से, और इसी चीज को मेरा ख्याल है कि मैंने कई दफा कहा है कि जब तक हम नमाज को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के डील नहीं करेंगे तब तक नमाज सही मानों में फायदेमंद नहीं होती। कि ये तमाम की तमाम चीजें हमारे लिए हैं, क्या हमारे लिए हैं कि हम खुदा से करीब हैं। تو یہ وہ پارٹ آف پرابلم نہیں ہے کہ خدا جانتا ہے کہ نہیں جانتا یا خدا قریب ہے یا نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں, ہم اس سے جاہل ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. اس کنڈیشن کو کیسے چینج کریں؟ تو اس کے لیے عبادت ہے, دعا ہے, عمل ہے. اور جی ٹھیک ہے, ختم کریں بات.